Anang Siddhim Yajante Devataha Kshipram Hi Manushe Loke Siddhir Bhavati Karamaja Kangshantah Karmanang Siddhim Yajanta Iha Devataha Kshiprang Hi Manushe Loke Siddhir Bhavati Karamaja Manushya is Sangsara Me Manushya Sakam Karmam Me Siddhi Chaitte Hain फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वरः परमः कृष्णः। कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। ये देवता जीवात्माओं है नित्यानम, जिन्हें विभिन्न मात्र में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, शिव वृंचि नूतम, तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मान कर, कर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं है। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे है। फिर भी मूर्ख लोग हठज्ञान हृतज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहते हैं, उससे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनकी पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित है, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहते हैं। ऐसे क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेते हैं, तो वह सोचते हैं कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुओं मिल भी जाती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करते हैं कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। इस भौतिक संसार में एक बड़ी भूल धारणा है कि देव देवियों की पूजा करनी चाहिए। तो वास्तव में इस पूरी भौतिक स्थिति भूल धारणा के ऊपर निर्माणित होते। हम किस लिए इस भौतिक जगत में है? कृष्ण भूले से जीव अनादि बहिमुख, अतैव माया तारे दया संसार दुख। क्योंकि हम जो बद्ध जीव है, हम कृष्ण को भूल किया है और हम कृष्ण के बहिमुख, मतलब कृष्ण को द्वेष करते। इच्छा द्वेष समुते न द्वंद्व मोहे न भारत सार्वभूतानि सम्मोहं सार्गे यान्ति परन्तपः। गीता में श्री कृष्ण व्याख्या करते हैं कि सभी बद्ध जीव इस भौतिक संसार में है, किस लिए? क्योंकि भगवान कृष्ण को द्वेष करते हैं और इसलिए इनके असंख्य इच्छाएं, भौतिक कामनाएं होती है। तो बद्ध जीवों भगवान के विमुख होते हैं और माया भगवान की बहिरंग शक्ति बद्ध जीवों को संसार दुख देते हैं। लेकिन बद्ध जीवों इतने बड़े मूर्ख, मतलब हम इतने बड़े मूर्ख कि हम सोचते तो यही सुख है। अगर कुछ ना कुछ तुच्छ इंद्रिय सुख मिलते हैं, हम सोचते तो यही पूर्ण सुख है। तो इंद्रिय सुख क्या है? तो स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करना और धन ऐश्वर्य में रहना और सुंदरी स्त्री या स्त्रियों के लिए सुंदर स्वामी या पैसा वाला स्वामी। तो ये सब तो इंद्रिय सुख का कारण है। जन्माश्वर्य श्रुत श्री, पुण्य कर्म करने से धन ऐश्वर्य जन्म, हाँ जन्म मतलब उच्च कुल में जन्म लेना, जन्म ऐश्वर्य धन प्राप्ति, श्रुत मतलब बुद्धि और उच्च शिक्षा प्राप्त होना। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री दैहिक सौंदर्य, तो ये सब पुण्य कर्म के फल हों। लेकिन वास्तव में ये सब भक्ति में बाधा है। पुण्य कर्म तो भक्ति नहीं है। जो देव देवियों की पूजा करते हैं
एक पुण्यशाली है लेकिन भक्त नहीं है। भक्ति और पुण्य कर्म में बहुत बड़ा अंतर है। तो कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त है। भगवद गीता में श्री कृष्ण इनकी शुद्ध भक्ति की श्रेष्ठता स्थापना करते हैं। तो भूल धारणा है कि इस भौतिक संसार मेरा भोग्य स्थान है, तो सब कुछ जो जागत में है तो मेरा भोग विलास करने के लिए है। तो ये मूल भूल धारणा है जिससे सभी बद्ध जीव इस भौतिक जगत में पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु, तो ऐसी अवस्था में रहते हैं बद्ध जीवों। तो ये बंधन का कारण है इंद्रिय सुख की इच्छा। तो ये असंख्य इच्छाएं की पूर्ति करने के लिए तो पुण्यशाली लोग देवताओं के पास जाते हैं और देव देवियों की पूजा करते हैं, और जो बिल्कुल असुर बदमाश है तो आप देव देवियों की पूजा भी नहीं करते, तो अपना बल से प्रयास करते हैं जगत में भोग विलास करना। रावण आ जैसे, तो रावण अभी शिव पूजा की, लेकिन शिव से वर प्राप्त करके तो रावण प्रयास किया शिव को परेशान कर, तो ऐसे असुर एक बार भागवत में भी वो एक वृकासुर, वृकासुर नामक एक असुर था। तो भगवान महादेव से एक वर मिला कि वृकासुर अगर किसी के सिर पर उसका हाथ रखेगा वो सिर तो फट जाएगा। तो फिर वो वर मिलके भगवान महादेव से, तो वृकासुर प्रयास किया उसके हाथ भगवान शिव के सिर पर रखना, तो ऐसे आसुरिक भावना। तो देव देवियों की पूजा करते हैं लेकिन एक्चुअली देव देवियों के लिए कोई भक्ति नहीं है, तो बहुत भक्ति दिखाते हैं लेकिन एक्चुअली देव देवियों से कुछ लेना चाहते हैं। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद और उदाहरण देते हैं कि इस पृथ्वी में जो बड़ा पद प्राप्त होने वाले प्रधानमंत्री जैसे या मंत्री उपमंत्री जैसे, तो ऐसे लोग के पास भी लोग जाते हैं और भक्ति दिखाते हैं। हे मिस्टर बज भाई, आप इतना महान है तो जरूर सर साइन करो, उधर मुझको कॉन्ट्रैक्ट दे दो। तो ऐसे तो वाजपेयी के पास कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं जाते लेकिन मंत्रियों के पास जाते, चीफ मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, तो बहुत भक्ति दिखाते। लेकिन क्या होता है, तो कोई अगर चीफ मिनिस्टर हो या स्टेट मिनिस्टर हो तो फिर चुनाव के बाद तो दूसरा साकार आते है और वो उसका पद त्याग होते बाय फोर्स जोर से। तो हरे कृष्ण, तो इतने सारे लोग जो उसको गिराते थे तो अभी उसका मुंह भी पहचान नहीं करते। तो पहले उस मिनिस्टर को इतने आपके लिए कुछ भेद है ऐसे घूस खिलाते, तो आपके लिए थोड़ा सा भेद है तो 1,00,000 रुपया दो और मुझको 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, तो इतने से भक्ति दिखाते। लेकिन जब मिनिस्टर जो मिनिस्टर नहीं होते तो साधारण मनुष्य बन जाते, तो कोई दोस्त नहीं है, कोई भक्त नहीं है, कोई फॉलोअर नहीं है। तो उसको बिल्कुल भूल करते, फिर अगर वो वापस आते फिर वो सब फॉलो वापस आते वही भी। तो ये एक्चुअली भक्ति नहीं है, ये सब पूजक, मिनिस्टर के पूजक, मिनिस्टर की पूजा करते हैं जैसे कि वे मिनिस्टर से कुछ मिलेंगे मिलेंगे। तो वैसे भी देवियों की पूजक इनकी पूजा करते हैं जैसे कि देवियों से कुछ मिलेंगे, कुछ बार मिलेंगे। धनम देही रूपवती भार्या देही, देही देही मुझको दो, मैं पूजा करता हूं तो फिर मुझको कुछ देना चाहिए नहीं? तो किस लिए हम पूजा करते हैं? अगर देवताओं हमको कुछ नहीं देंगे तो ऐसा होता है। प्रभुपाद एक बार एक कहानी बोले कि एक आदमी कार्तिकेय की पूजा की, एक लड़का संतान प्राप्त करने के लिए, तो वो लड़का मिला तो फिर और धूमधाम से कार्तिकेय की पूजा की। सोच रहा था कि वो कार्तिकेय स्कंद कुमार मुर्गम, तमिलनाडु में मुर्गम बोलते, तो मुझको बहुत अनुग्रह करते। फिर एक दिन वो लड़का शिशु अचानक मर गया, तो वो कार्तिकेय के पूजक तो कार्तिकेय की मूर्ति लेके तो अपार्टमेंट के ऊपर से फेंक दिया, और विश्वास नहीं। तो इतनी सी भक्ति दिखाए, लेकिन जब वो लड़का मार गया था तो सोच रहा था ये कार्तिकेय बेकार है। वो उसका क्या दयानंद सरस्वती पंजाब के था, पंजाबी वो दयानंद आर्य समाज के संस्थापक, वो बचपन में ही वो देखा कि वो उसके गांव में एक जागरण था मंदिर मंदिर में,
शिवरात्रि
वो सब सब लोग तो जागरण, लेकिन सब सो गए बीच रात के बीच में। वो और वो दयानंद उस समय तो बालक था, वो देखा कि वो सब नैवेद्य जो मूर्ति को खिलाने के लिए है जो सब छुआ आता था वो सब खाया था। फिर वो सोच रहा था कि मूर्ति की कोई शक्ति नहीं है, और आर्य समाजी को बताया तो मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति की कोई शक्ति नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति सभी नास्तिक है। और दूसरा कहानी है प्रभुपाद हमको बताए कि एक काली उपासक था, काली से एक वर मिला और काली को बोला कि अगर वो वर अगर मुझको देगा जो मैं चाहता हूं तो मैं बलिदान करूंगा एक बकरी, आपको बलिदान दे दूंगा। तो फिर वो बाप वर प्राप्त किया, और कुछ दिनों के बाद वो काली मूर्ति रूप में काली उपासक को बोले कि तो मुझको एक बकरी अर्पण बोलते था तो मुझको दो। नहीं तो बहुत महंगा है, उसका दाम बहुत बढ़ गया, तो कम से कम मुझको एक क्या खरगोश अर्पण करो। ओ ठीक है बाद में देखूंगा। तो कुछ दिनों के बाद वो खाली बोले तो मुझको खरगोश एक तो सब कैसे पका लेगा, तो बाजार में नहीं मिलते तो कैसे पका, तो मुझको कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए। तो कम से कम एक मच्छा मुझको अर्पण करो। तो उपासक बोला कि तो उनके दस हाथ है दाशुभुजी, तो एक हाथ से एक माचा को खुद पका लो, मैं क्यों अर्पण करूंगा। तो ऐसे उपासक जो देव देवी उनकी उपासक, तुम भक्ति नहीं करते। बहुत लोग बोलते कि मैं देवी की भक्ति करता हूँ, ये मैं शंकर जी भगवान की भक्ति करता हूँ, या मैं ऐसे बहुत आधुनिक प्लास्टिक भगवान है, प्लास्टिक से ही बनाया है, मतलब असली चीज तो नहीं है। तो ऐसे लोग तो ये सब भगवान को भक्ति करते, लेकिन एक्चुअली वो शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। शुद्ध भक्ति क्या है? वो कृष्ण के लिए है, क्योंकि कृष्ण भक्ति आत्मधर्म है। जीवेश्वर रूप हो कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। तो अगर देवी देवियों की पूजा करना है वो अन्याय है, क्योंकि वास्तव में देव देवियां उपयुक्त नहीं है दूसरों की पूजा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि पूजा भगवान के लिए होना चाहिए। और भगवान स्वयं बोलते हैं मद भक्ता पूजा व्याधिका, पूजा विधि में तो कैसे कृष्ण की पूजा करना है उसमें श्री कृष्ण सब व्याख्या करते हैं कि फल फल इत्यादि से मेरी पूजा करना है। और श्री कृष्ण और बोले कि मद भक्ता पूजा व्याधिका, तो मेरी पूजा करने से मेरे भक्तों की पूजा वो अधिक वो और महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कभी कभी भक्तों पूछते हैं कि हम क्यों देव देवियों की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि वे भी भक्त हैं। तो वे भक्त हैं यम ब्रह्मा रुद्र क्या ब्रह्मा रुद्र गगनेन्द्र मरुत स्तुंदंती दिव्याय, तो सब देवगण कृष्ण की भक्ति करते, लेकिन वो ज्यादा अधिकांश देवताओं सकाम भक्त है, वे भी शुद्ध भक्त नहीं है। और ऐसे पद मिलते इंद्र ब्रह्मा चंद्र इत्यादि, क्योंकि भगवान की पूजा करते थे लेकिन सकाम भौतिक कामनाओं के साथ। मतलब कोई कोई भगवान की पूजा की लेकिन बड़ी स्थिति प्राप्त करने के लिए। तो अगर यथेष्ट पुण्य कर्म करना है तो ऐसे व्यक्ति इंद्र हो सकते या ब्रह्मा हो सकते, लेकिन इंद्र और ब्रह्मा की स्थिति शुद्ध भक्तों के अंकों में एकदम तुच्छ है। वो इसके बारे में प्रबोधानंद सरस्वती बोले विधि महेंद्र दिशा कीटायते, विधि मतलब ब्रह्मा और महेंद्र इंद्रदेव। तो शुद्ध भक्तों के परिपेक्ष में वे कीट के समान है, तो बड़े बड़े देवताओं तो कैसे कीट के समान, क्योंकि कीट तो जीव है बद्ध जीव और इंद्र भी बद्ध जीव। तो जो आज आत्मा जो कीट के शरीर धारण करते हैं, तो कुछ जन्मों के बाद तो इंद्र हो सकते, और जो आज इंद्र है तो इसके बाद कीट हो सकते। और शुद्ध भक्तों तो कोई भौतिक स्थिति नहीं चलते, शुद्ध भक्तों तो इंद्र के पद या ब्रह्मा के पद नहीं चलते। शुद्ध भक्तों चलते है कि कीट जन्म हाओ जता तो अदास, बही मुक्क ब्रह्म जन्मे नहीं मोरा आश। तो शुद्ध भक्तों चाहते हैं कि यदि मैं अवसर मिलूंगा आप मतलब कृष्ण की भक्ति करने, कीट के रूप में मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन अगर अवसर मिलते हैं ब्रह्मा जी की कुर्सी पद्मासन प्राप्त करने, लेकिन मैं शुद्ध भक्ति नहीं करूंगा, तो वो स्थिति में ग्रहण नहीं करूंगा। तो यही भक्ति भावना है। शुद्ध भक्तों तो भगवान से कोई सुविधाओं कोई इच्छा पूर्ति करना तो नहीं चाहते। शुद्ध भक्त तो कृष्ण की सेवा करते किस लिए? केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। इसी विषय में प्रहलाद महाराज का चरित्र आदर्श है कि प्रहलाद महाराज अपना पिताजी से हिरण्यकशिपु से बहुत बहुत परेशान में, लेकिन प्रहलाद महाराज तो कभी खिलाफ नहीं किया, तो केवल श्री कृष्ण के स्मरण किए और कभी भी कृष्ण को खिलाफ नहीं किए कि मैं हे कृष्ण मैं आपका भक्त हूँ तो किस लिए मुझे इतने सा परेशान मिलने वाले हैं। तो अंततः भगवान नृसिंहदेव रूप में आए थे और हिरण्यकशिपु को वध किया। तो हिरण्यकशिपु का वध के बाद नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज से पूछे तो मुझसे क्या बात, क्या आशीर्वाद मिलना चाहते हो? तो उस समय प्रहलाद महाराज जो इतने सब परेशान में कभी भी खिलाफ नहीं किए, उस समय भगवान को खिलाफ किया। तो मुझको ऐसे बोलते क्यों? मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं आपकी भक्ति नहीं की जिससे आपसे भौतिक आशीर्वाद मिलूंगा। तो आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ, सिर्फ यही आशीर्वाद मिलना चाहता हूँ कि आपकी भक्ति में डालूंगा। तो खाली यही अवसर चाहता हूँ कि आपकी भक्तों की संगति में मैं चिरकाल में आपकी भक्ति कर सकता हूँ। तो यही शुद्ध भक्ति है। जो देव देवियों की पूजा करते हैं वे वर प्राप्त हो सकते हैं और शीघ्र भी तुरंत ही वर प्राप्त होते हैं, लेकिन वर जो देव देवियों से मिलते हैं वो सभी भौतिक है, वो सब कुछ जो भौतिक है क्षणिक है अस्थाई है। तो शुद्ध भक्तों कृष्ण भक्ति करते हैं और ऐसे बार भगवान से मिलते हैं जिसका नाश कभी नहीं होगा। वो क्या है? वो चरम वर है श्री कृष्ण से यही अवसर मिलना कि भक्तों चिरका इनकी सेवा कर सकते। अन्याभिलाषिता अन्य अभिलाष शून्य भक्ति करना परम वर है और उस वर के लिए भक्ति करनी चाहिए। और वास्तव में भक्ति जो देव देवियों के लिए वो एक्चुअली भक्ति नहीं है, वो खाली दिखाने के लिए एक प्रकार का व्यापार है। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति में देव देवियों की पूजा नहीं करना चाहिए। तो मगर हम शिव मंदिर के पास जाते हैं हम सम्मान दे सकते हैं कि ये भगवान के श्रेष्ठ भक्त है, लेकिन रोज शिव की पूजा करना इसका कोई जरूरत नहीं है। केवल श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए और क्योंकि श्री कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्वकारण कारणम, इसलिए यदि हम श्री कृष्ण और कृष्ण के आचार्यगण शुद्ध भक्तों की पूजा करेंगे तो ऐसे पूजा करने से हम जीवन के श्रेष्ठ वर मिलेंगे, वो ही शुद्ध कृष्ण भक्ति। भक्ति करने से भक्ति प्राप्त जाती है, तो यही शुद्ध भक्ति है। और इसलिए श्री प्रभुपाद इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ स्थापना किए हैं जिससे लोग जो इस भूल धारणा से विभ्रमित होते हैं, इस भूल धारणा की मैं भोगी हूं इंद्रिय सुख जीवन का उद्देश्य है, और इसलिए जो पुण्यशाली है देव देवियों की पूजा करते हैं। तो खास भारत में ये देव देवी पूजा बहुत प्रचलित होती है, लेकिन हमारे प्रचार है कि देव देवी पूजा बंद करो और केवल श्री कृष्ण की पूजा करो। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कई प्रश्न है। कीट मतलब नहीं, कीट मतलब एक आत्मा जो बहुत बड़ा, जब मानव शरीर में था बहुत पाप किया, तो इसलिए अभी कीट शरीर धारण करते हैं। तो धीरे धीरे फिर मानव शरीर प्राप्त कर सकते हैं, वो पाप फल भोग करने के बाद तो मानव शरीर धारण कर सकते हैं। फिर अगर मानव शरीर में पुण्य काम करेंगे तो एक जीवन में नहीं है, तो बहुत जीवन के आदर्श पुण्य कर्म करके तो ब्रह्म पद मिल सकते। तो कीट से डायरेक्ट ब्रह्म नहीं हो सकते, ऐसा नहीं। हाँ, शिव तो वैष्णव आनंद था शंभु, तो इस एक्चुअली शिव के ऊपर भी ब्रजवासी हूँ, लेकिन भौतिक परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव श्रेष्ठ वैष्णव है, जिनकी दृष्टि ब्रज तक नहीं पूछते हैं, तो केवल इस भौतिक जगत तक पूछ जाते हैं। तो देवता सोचते हैं कि देवताओं सबसे बड़े हैं, और देवताओं में शिव जी सबसे बड़े हैं, इसलिए सारों लोग के परिपेक्ष में शंभु श्रेष्ठ वैष्णव है। तो फिर भी हम साधारणतया इनकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि हम भक्त के उपास भक्त की उपासना के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, और खास आचार्यों के द्वारा हम भगवान की उपासना करते हैं। और सर्वदेवमय गुरु हो, गुरु तो सभी देवताओं के प्रतिनिधि हैं, मतलब सभी वर जो हम देवताओं से मिल सकते हैं, तो वो और बहुत कुछ और बहुत ज़्यादा भी गुरु से मिल सकते हैं। तो शंभु तो परम वैष्णव है, लेकिन इनके साधारण काम है सृष्टि का संहार करना, और उनके साथिया सब भूत प्रेत इत्यादि है, और शिव उपासक ज्यादा तो मायावादी होते हैं। तो इसलिए हम शिव को सम्मान देते हैं, लेकिन इनकी आराधना हम करते हैं भगवान और भगवान के आचार्य गण के द्वारा। और ये शिवलिंग ऐसे ही पूजा करना है, तो वो सब तो वो भौतिकवादी के लिए।